जी, गुड मॉर्निंग। आज का हम सेशन शुरू करने के पूर्व हमारे आज के महानुभाव जिनसे आज यह मंच सुशोभित होगा, उनका मैं मंच पर तहे दिल से आह्वान करती हूं। हमारी आज की चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, की नोट स्पीच देने वाली राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी, गेस्ट ऑफ ऑनर बहन नीरा मल्होत्रा जी, देवी ब्राता विपिन आहूजा जी, आपसे मेरा नम्र अनुरोध है कि आप मंच पर पधारकर मंच की शोभा बढ़ाएंगी। मैं पुनः हमारे सर्व महानुभाव जो हमारे आज के गेस्ट हैं, कीनोट स्पीच देने वाली ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन, हमारी चेयरपर्सन राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी, आपसे पुनः मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर पधारे, इस मंच की शोभा बढ़ाएं। बहन नीरा मल्होत्रा जी, आपसे अनुरोध है कि आप आइए, मंच को सुशोभित कीजिए। हम सभी करतल ध्वनि से देवी बहन नीरा जी का स्वागत करते हैं। देवी ब्राता विपिन आहूजा जी, आप भी सभा में उपस्थित हो तो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी एवं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, आप सभी से मेरा नम्र अनुरोध है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आसीन हमारे सर्व महानुभावों का बैच एवं पुष्पों के द्वारा अभिनंदन करें, अभिवादन करें। आदरणीय गीता दीदी जी, हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत कर सकते हैं। ब्राता विपिन आहूजा जी का स्वागत बैच के द्वारा किया जा रहा है, हम सब भी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी, आपका भी बैच पुष्पों से स्वागत हो रहा है, हम सभी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहन नीरा मल्होत्रा जी, आपका भी स्वागत है। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं, यह प्रतियोगिताओं से भरपूर चारों ही ओर अगर हम देखें, तो हर मानव कुछ न कुछ पाने की होड़ में दिखाई दे रहा है। आज जीवन बहुत जटिल बन चुका है, चारों ही ओर समस्याएं भी बहुत जटिल है। इन जटिलताओं और उलझनपूर्ण जीवन के अंदर रहते हुए आदमी आज चाहता है धन संपत्ति भौतिक साधन ये सारे इकट्ठे तो करते जा रहा है, परंतु उसके जीवन का संतुलन बनाए रखकर और चलना और इन परिस्थितियों को पार करना ये आज एक बहुत बड़ी बात हो गई है। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है अपने अंतर्निहित शक्तियों की। हमारे पास शक्तियां नहीं हैं, ऐसा भी नहीं, परंतु इन शक्तियों के सामने आने वाली जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, वे शक्तियों से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अर्थात हमारी अपनी आंतरिक शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। अब फिर से यदि उन शक्तियों को बढ़ाया जाए, उसका विकास किया जाए, तो हम अपने जीवन को संतुलित रखकर चल सकते हैं। संतुलन रखना ये एक बहुत बड़ी कला है और उसके लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम इस सत्र के अंतर्गत जानेंगे कि हम अपने अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारी जीवन को हम संतुलित होकर चला सके, जो हम चाहे जिस तरह से हम अपने आप को ढालना चाहे हम चल सके। तो आज हमारे मंच पर महानुभाव उपस्थित हैं, अनुभवी वक्ताएं उपस्थित हैं। तो आज हम इन सभी वक्ताओं के द्वारा इन बातों पर स्पष्टीकरण जानेंगे। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे कीनोट स्पीच देने वाली ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी से। आप लगभग 50 वर्षों से इस ईश्वरीय सेवा में जुटी हुई हैं। आप जोनल कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस विंग जयपुर से हैं। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूं कि आप आज के इस विषय पर अपने अनुभवों के आधार पर स्पष्टीकरण करेंगे। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी।
ओम शांति। सर्वशक्तिमान परम पिता के प्रिय संतान आत्माओं, मंचासीन हमारे विद्वान वक्तागण, सभा में उपस्थित देवी भाइयों बहनों, हम पिछले दो दिनों से ईश्वरीय ज्ञान और परमात्म शक्ति प्राप्त करने के लिए राजयोग की साधना सीख रहे हैं। और ये राजयोग जो गीता में वर्णित है, स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश दिए और प्रमुख तौर पे राजयोग की व्याख्या की। आरंभ ही गीता का हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। तो हम सबका जीवन भी एक संग्राम है कुरुक्षेत्र। हम सबके भीतर एक अर्जुन है। हम कई बार अनेक प्रश्नों में उलझ जाते हैं, आशा निराशा, सफलता सफलता, स्थिति परिस्थितियों में फंस जाते हैं। लेकिन हम इस संग्राम में, जीवन संग्राम में एक रणनीति भी अपनाते हैं और वो हमारी रणनीति हमें हार या जीत में लाके खड़ा कर देती है। यदि हमारी रणनीति ठीक है तो सब कार्य श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। यदि हमारी रणनीति में कहीं दोष है तो संघर्ष बढ़ता जाता है। अब जिस प्रकार की हम योजनाएं बनाते हैं जीवन के लिए, प्लानिंग करते हैं, उस अनुसार हम आगे अपने फल को प्राप्त करते हैं। साथ साथ जीवन में अनेक चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों का सामना भी होता है और कई बार ऐसा लगता है कड़ी मेहनत के बावजूद भी मन चाहा फल नहीं मिलता, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं क्या है ऐसा। लेकिन समाधान हमारे अंदर ही है और हमारे अंदर क्या है, आत्मा, आत्मिक शक्ति। आत्मा में जो आत्मिक शक्ति है, आत्मा में मन है तो मनोबल है। अपने मनोबल, आत्मबल, अपने हिम्मत, साहस, इन गुणों की सहायता से हमें समाधान मिल सकता है। तो इसके लिए हमें अपने अंदर की ओर जाना होगा, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना होगा, आत्मनिरीक्षण करके अपनी कमी कमजोरियों पर विजय पानी होगी, तभी इस जीवन रंग संग्राम में विजय हासिल होगी। आगे हम देखते हैं कि जब ये चुनौतियां आती हैं तो हम विचार करने लग जाते हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपयुक्त होगा, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। लेकिन उसमें कई बार हम लोभ में आकर गलत तरीकों को अपना लेते हैं और यहां तक कि अपने जीवन मूल्यों को भी दांव पर लगा देते हैं। परिणाम दुष्ट हो जाते हैं और अंत पछतावे का मिलता है। तो फिर से हम अपने स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, स्वयं की शक्तियों का विकास करें। तो पहली स्टेज है सेल्फ एनालिसिस, अपने आत्मा का परिचय। राजयोग ध्यान की क्लास में सुना, आत्मा के मूल गुणों को जाना। आत्मा के मूल गुण, जो पहला लेसन हमें पढ़ाया गया कि आत्मा के निज गुण हैं ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, शांति, आनंद और आत्मा प्रकाश में। इन मूल गुणों का ह्रास क्यों हुआ, इसका भी कारण हमने समझा। इसका कारण अज्ञानता हुई, आत्मस्वरूप को भूल गए और देह स्वयं को मानने लगे। देह की अज्ञानता में आने से हम अपने मूल गुणों को खो बैठे, क्योंकि देह में आए तो हमारे अंदर पांच मनोविकारों ने जन्म लिया, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे पानी का गुण शीतलता है, जब आप उसको अग्नि पे रख देते हैं तो अग्नि के संपर्क में आने से वो अपने शीतलता के गुण को त्याग देता है और जैसे ही आप उसे अग्नि से हटा देते हैं तो पुनः वो जल अपने शीतल स्वरूप में आ जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम भी जब देह अभिमान जनित पांच बुराइयों में ग्रसित हुए, इन पांच विकारों की अग्नि ने हमारे मौलिक स्वरूप को विकृत कर दिया, बिगाड़ दिया। और जैसे इस अग्नि से हम अपने आप को दूर करते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, आत्मस्वरूप में आते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और अपने गुणों का चिंतन करके इन गुणों की अनुभूति में आते हैं, तो पुनः हम अग्नि देह भान की अग्नि से न्यारे होके अपने मूल गुणों को पा लेते हैं। तो आत्मा मूलतः उसका गुण वो शांतिमय सत्ता है। आत्मा प्रेम भाव से भरपूर है, परिपूर्ण है। आत्मा पवित्र शक्ति है, आनंदमय सत्ता है। और जो शांत प्रेम भाव से भरपूर आत्मा, प्रेम और पवित्रता से भरपूर आत्मा है, वो फिर अपने स्वरूप में आ जाएगी और अपने गुणों को विकसित करेगी। उसका माध्यम है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन अनुभूति में लाएगा, एक एक गुण का चिंतन वो फीलिंग बनाएगा। साइकोलॉजी में कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो आवश्यकता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, सेल्फ एनालिसिस की, और आत्मचिंतन करना और आत्म अनुभूति करना। और ये गुण ही हमारी आंतरिक शक्तियां हैं। प्रेम शक्ति है, शांति शक्ति है। आंतरिक शक्तियों का विकास, इन स्ट्रेंथ क्या है, इन गुणों का विकास। दूसरा पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। जब सेल्फ एनालिसिस हो जाता है, सेल्फ की क्वालिटीज पर हम कंसंट्रेट करते हैं और इन क्वालिटीज को डेवलप करते हैं, तो सेल्फ कंट्रोल नेचुरली बिल्डअप होता है। सेल्फ कंट्रोल का अर्थ है आत्मा राजा, इंद्रियों पर शासन करने वाली अधिकारी आत्मा। तो आत्मा राजा का इंद्रियों पर शासन तो होना ही चाहिए, तभी तो अच्छी राजा मानी जाएगी। और इंद्रियां अगर हमें चलाएं, हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएं, तो हम आत्मा राजा मालिक नहीं, हम दास हो गए। अब प्रकृति में भी देखिए, एक इंद्रिय की गुलामी कितना विनाशकारी होती है और कितना पीड़ा देती है। और हम तो 5 इंद्रियों के गुलाम हो गए। उदाहरण के लिए एक स्वाद इंद्रिय लेते हैं, स्वादिष्ट चटपटा मिर्च मसाले का तला भुना भोजन किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन संयम से लिया जाए तो वो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जब संयम खत्म हो जाता है और अनियमितता जीवन में आ जाती है और हम इस स्वाद इंद्रिय के गुलाम होके रोज लेने लग जाते हैं इस प्रकार का भोजन, तो वो हमारे पाचन के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। मछली को जब तालाब से निकाला जाता है, मछलियों को, तो मछुआरा दाना डालता है और दाने के लालच में सारी मछलियां इकट्ठी हो जाती हैं और मछुआरा जाल डाल के उनको फंसा लेता है और जाके बाजार में बेच देता है। मछलियों की जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। तो विवेक ना होने के कारण मछली की ये दुर्दशा हुई। आनंद मनाना गलत नहीं है, इंद्रिय सुख गलत नहीं है, शरीर साधन है, शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रियां है, तो सेंसरी प्लेजर्स, कंफर्ट ठीक है। लेकिन बियॉन्ड लिमिट जब हम चले जाते हैं और संयम से आगे बढ़ जाते हैं, विवेक का उपयोग नहीं करते हैं उसमें, तो वो उपयोग की जगह उपभोग बन जाता है। उपभोग दुखदायी है, भोग काम पतन में लाता है, क्रोध विनाशकारी है। तब गीता में भगवान ने कहा काम और क्रोध नर्क के द्वार है। काम से अर्थ कामनाएं, और कामनाओं का कोई अंत नहीं है। एक पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है, और चाहिए और चाहिए, लालच बढ़ता जाता है। और जब लालच बढ़ जाता है, उपलब्ध भी हो जाती हैं वो चीजें, तो उसमें मोह आ जाता है कि मेरा है, पोजीशन की फीलिंग आ जाती है, और फिर एक फियर डेवलप हो जाता है कहीं ये मेरे से छिन ना जाए, फियर टेंशन में आ जाते हैं, और उन गेन्स के लिए हमारा ईगो बन जाता है, अहंकार डेवलप हो जाता है। तो सेल्फ कंट्रोल कब होगा? जब हम सेल्फ अवेयरनेस बिल्डअप करेंगे और इन इंद्रियों का उपयोग करेंगे, उपभोग नहीं होगा। तो हमारे यहाँ भी आप देखिए सारे साधन सुविधाएं हैं, लेकिन ये कल्याण के लिए हैं, सेवा के लिए हैं, ये भोग के लिए नहीं है। तो यहाँ भौतिक और अध्यात्म का बैलेंस है। मटेरियलिस्टिक लाइफ भी है तो स्पिरिचुअल लाइफ भी है, और दोनों का हम बैलेंस बना के चलते हैं तब हमारी लाइफ ब्लेसफुल हो जाती है। दूसरी इंद्री का हम उदाहरण लें, स्पर्श इंद्री, हथनी और हाथी, इनका जब संगमरमर निकाला जाता है तो संगमरमर से खिलौने, ज्वेलरी, कई आइटम्स बनते हैं। तो क्या किया जाता है, हाथी के आगे हथनी को सामने लाया जाता है और वो काम में मदहोश हो जाता है और होश आवाज खो बैठता है, तब उसका शिकार किया जाता है। तो एक इस इंद्री की गुलामी, दास्ता या विवेक का प्रयोग नहीं हो रहा है कि इसके पीछे वजह क्या है, और विवेक का प्रयोग ना होने से, डिवाइन विस्टम नहीं होने से विनाश हो जाता है। तो हम इसका परिणाम देख रहे हैं आज समाज में, अश्लीलता, नैतिकता, व्यभिचार, दुराचार, और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सियासत चली गई, राजाओं की राजाई चली गई, प्रशासकों पे चरित्र पे धब्बे आ गए, मंत्रियों का उनका शासन चला गया, एक उनकी गुलामी ने उनकी ये दुर्दशा बना दी। तो जहां एक इंद्रिय की गुलामी कितनी भयानक है, तो हम आत्माएं तो पांचों इंद्रियों के गुलाम हो गए ना, तो पांचों इंद्रियों की गुलामी ने आज क्या स्थिति बना दी। इसलिए आवश्यकता है सेल्फ कंट्रोल की, और जब सेल्फ कंट्रोल बिल्डअप होता है थ्रू डिवाइन विस्टम, संयम नियम आता है, तो हम डिसिप्लिन में आते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जीवन में ऑटोमेटिकली होता है। डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, ये भी आत्मा से जुड़ा हुआ है, अनुशासन, अपने ऊपर शासन करना। और जो बच्चे छोटी आयु से ही अनुशासन से कतराते हैं, अनुशासन के नाम से डरते हैं, वो कभी भी गुड लीडर नहीं बन पाते, और ना वो मैनेजमेंट में, अपने वर्क फील्ड में सफल हो पाते हैं। तो ये पहली सीढ़ी है अनुशासन। हमने एक एथिक्स को अवॉइड किया, एक रूल भी अवॉइड कर दिया, एक नियम भी हमने अवॉइड किया, इग्नोर किया, तो हमने एक दरार पैदा कर दी जीवन रूपी नाव में। धन का प्रलोभन, सत्ता का मद, कुर्सी का अहंकार, और उसके प्रभाव में आके हमने नियम, कायदे, कोई रूल, रेगुलेशंस अवॉइड किए, छोटे छोटे भी, तो वो जीवन रूपी नाव में दरार आती जाती है। और जब ये अनेक दरारें बन जाती हैं, तो नाव कमजोर हो जाती है, और संसार सागर में ये नाव, इसमें पानी भर जाता है, और फाइनली डूब जाती है, जीवन नैया डूब जाती है। तो गीता हमें क्या सिखाती है, संसार सागर में तैरो, डूबो मत। संसार का जल हमारे अंदर नहीं आए, अंदर आ गया तो हम डूब जाएंगे, नाव में जल आ जाता है, नाव को डुबो देता है, लेकिन हम तैरें, अर्थात जल से ऊपर रहें, न्यारे रहें और प्यार से रहें। कीचड़ में कमल जैसे होता है, कमल कीचड़ में है, परिवार है कीचड़ में, लेकिन उससे न्यारा है। तो यहां कौन सा भाव आता है, अनासक्त भाव आ जाता है, निर्लिप्त स्टेज बन जाती है, साक्षी भाव आ जाता है और ट्रस्टीशिप की भावना आती है। ये चार बेसिक चीजें हैं, साक्षी भाव की प्रैक्टिस, अनासक्त भाव की प्रैक्टिस, निमित्त भाव की प्रैक्टिस और हम अपने आप को न्यारा रखने की कोशिश करें जितना हो सके। तो ये चीजें हमारे, ये जब एटीट्यूड बिल्डअप होता है तो एटीट्यूड ये हमारा हमारे एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है और हमारा एक्शन भी श्रेष्ठ हो जाता है, हम सच्चे अर्थों में कर्म योगी बन जाते हैं। तो डिसिप्लिन और फिर सेल्फ एस्टीम, फोर्थ पॉइंट आ जाता है सेल्फ एस्टीम। अपने मूल्य जो हैं, आत्मा के जो मौलिक सात गुण हैं, उनका गर्व होना चाहिए। अहंकार और गर्व में अंतर है। अहंकार नाशवान चीजों का है, जो परिवर्तन होने वाली चीजें हैं उनका अहंकार होता है। धन आज है कल चला जाएगा, आज जवानी है कल बुढ़ापा आ जाएगा, आज सुंदरता है कल बदसूरती बन जाएगी, आज पोस्ट पोजीशन है कल रिटायर हो जाएंगे। और हमने अगर इनका अहंकार किया और अहंकार में आकर मानवीय दृष्टिकोण का त्याग कर दिया, हमने दूसरों की सेवा न करके उनको उनके साथ छल कपट किया तो क्या होगा? कुर्सी से लोग सम्मान जरूर दे देंगे लेकिन कुर्सी जाने के बाद अकेले हो जाते हैं। तब कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद कोई पूछता ही नहीं है। तो वो दिल के राजा नहीं बने, ठीक है, प्रशासक हैं, राजा हैं, कुर्सी है तो लोगों ने नमस्कार भी किया, लोगों ने सिर भी झुकाया, सम्मान भी किया और पोस्ट चली गई, रिटायर हो गए, तो आज वो बिल्कुल लोनली फील करते हैं। तो ये स्थिति अहंकारी की आ जाती है ना। और जो गर्व में है, अपने मूल्यों पर गौरवान्वित होता है, वैल्यूज को वैल्यू देता है और लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, धन पोजीशन मान सत्ता नहीं, हमारे ये वैल्यूज इम्पोर्टेंट है। तो वो दिलों पर राज करती है आत्मा, उसका सुशासन होता है और सम्मान भी उनको सब लोग दिल से देते हैं। तो जब आंतरिक गुणों को हम विकसित करते हैं, इन फोर पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, तो हमारे अंदर जो व्यवहार आता है एटीट्यूड से, वो व्यवहार उत्तम उज्जवल चरित्र वाला, एक उज्जवल चरित्र निखर के आता है, एक सुंदर व्यक्तित्व बन के सामने वो आती है, आता है और प्लीजिंग पर्सनैलिटी उसको देख के सब खुश होते हैं और खुशियां वो बांटते हैं। अब आगे आप देखिए, जब बैलेंस बिहेवियर की बात आती है तो प्रशासक हैं आप, अपने अपने फील्ड में मैनेज करते हैं कंपनीज को, ऑफिस में कहीं भी, तो वहां छोटी छोटी बातें कई बार जो हमारी मन पसंद नहीं होती हैं, छोटी छोटी बातों को हम प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, नादानी में कह दिया, अज्ञानता में कह दिया, किसी भी वे में कहा, कुछ बात हो गई, वो हमारी एक प्रेस्टीज इश्यू बन जाती है। और जब प्रेस्टीज इश्यू बन जाती है तो हम हटी हो जाते हैं, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है और हटी होने के बाद ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड भी हमारा खत्म हो जाता है। तो कुछ भी हो लेकिन हम पहले मानव हैं तो मानवीयता को अपनाएं। देवता बनना तो चलो दूर की बात है, आप कहेंगे आप देवता बना रहे हैं, ठीक है, राजयोग की पढ़ाई देवता बनाती है, लेकिन मानव तो बने। और मानव बने, मानव में जो क्वालिटीज हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, सबके प्रति रहम भाव, कल्याण की भावना, शुभ भावना, सद्भावना, ये तो हो। अगर हमने लोगों को कुचला अपने फेम एंड प्रेस्टिज को बनाए रखने के लिए, कितनों को दर्द दिया, कितनों को कुचला, कितनों के साथ हमने स्वार्थपूर्ण व्यवहार किया, कितनों को हम पछाड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब हम गिरते हैं तो उन्हीं लोगों का हमें सामना करना पड़ता है, और उन नजरों से, चुभती नजरों से अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली हमारी वैल्यूज यही हमारी सहायता करती है। साथ-साथ एम्बिशियस होना गलत नहीं है, लेकिन हमने क्या रणनीति अपनाई, खाओ पियो ऋण लेके भी घी पियो, खाओ पियो मौज करो ऋण लेके घी पियो। एक नीति ये है जी और जीने दो, और एक नीति ये है कि हम सेवा भावी हैं, सर्वेंट हैं, तो हम सेवा भावना से चलें सबके साथ। और कुर्सी का, कुर्सी हमें अहंकार जताने के लिए नहीं मिली है, लोभ में पेटियां भरने के लिए कुर्सी नहीं पाई है, कुर्सी मिली है जन कल्याण के लिए, दुआओं के लिए, परमार्थ के लिए, सेवा के लिए। तो एम्बिशियस होना गलत नहीं है, लेकिन जो हम मीन्स अडॉप्ट कर रहे हैं, या तो हुक एंड क्रुक से हमें अपने गोल को अचीव करना है, या हमें सही साध्य अपना के साधन को पाना है, फेयर एंड फाउल मीन्स में है, या साधन की शुद्धता जो साध्य की खुशी देती है। तो साध्य और साधन पर भी बहुत कुछ गीता ने हमें सिखाया है कि साध्य ठीक हो, पर साधन भी उसके लिए ठीक होने चाहिए। तो हमारी जो अप्रोच है वो अगर राइट है तब हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो एम्बिशन एंड सेटिस्फेक्शन का बैलेंस आ जाता है। इसके साथ साथ जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का भी सामना करना होता है, तो प्रिंसिपल्स लेके जो लोग चलते हैं और अपने प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहते हैं, उन्हें समस्या नहीं आती। लेकिन प्रिंसिपल्स के में फॉर्म और दंड देना है, पनिशमेंट देना है, तो पनिशमेंट में भी लवफुल एटीट्यूड, कल्याणकारी भावना। केवल पनिशमेंट दिया जाए और वो अगर बदले की भावना से दिया जाता है, अपने अहंकार की, अहम की तुष्टि के लिए किया जाता है, तो वो दुश्मन पैदा करता है, या दुश्मनों की संख्या उनकी बढ़ती जाती है, विरोधी बढ़ते हैं। और प्रिंसिपली हम राइट हैं और हम प्रिंसिपल्स पर स्थिर हैं, और जहां एक इशारे से काम चल सकता है, वहां चाबुक लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां ये बैलेंस है लव एंड लॉ का। सच सच रामायण कहती है, सही अर्थों में योगी कौन है, जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ में समान है। तो अपमान, क्रिटिक्स आते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपके अच्छे काम की भी आलोचना होगी, क्योंकि वो जेलस हैं, उनमें नेगेटिविटी है। लेकिन जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो अपनी इनर पावर से वर्क करते हैं, वो क्रिटिक्स की बातों पे ध्यान नहीं देते और अपने ईगो को पीछे रखकर अपने वर्क पर कंसंट्रेट करते हैं। तो उनकी ये इनर क्वालिटी, इनर स्ट्रेंथ जब उन्हें सफलता दिलाती है, तो उनके निंदक भी मित्र हो जाते हैं, वो भी उनके प्रशंसक बन जाते हैं। तो हम अगर प्रशंसा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो हमें कभी निंदा में भी दुखी कर देगा, और प्रशंसा मिलेगी तो हमें आसमान पे भी चढ़ा देगा और धरती पे भी पटक देगा। लेकिन हमारा एम क्या है, हम कर्मयोगी हैं, कर्म पर हमारा अधिकार है, हम केवल कर्म के बारे में चिंता करें, फल की चिंता नहीं। अगर हम फल के बारे में ही सोचते रहेंगे, इससे मुझे ये बेनिफिट होना है, इससे मुझे ये मिलना है, तो कर्म पे ध्यान नहीं होगा। तब गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ध्यान दो, फल फल पर ध्यान नहीं दो, फल जो आता है उसको स्वीकार कर लो। और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की लाइफ में इतना बिजी शेड्यूल है, बिजी लाइफ है, वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, और उसमें भी अपने आप को इजी कैसे बनाए रखें, तो मैं कहूंगी फिजिकल टायर्डनेस नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मेंटली हम टायर्ड होते हैं। और मेंटली टायर्ड कब होते हैं? जब हम मोटिवेटेड नहीं होते, हमें खुशी नहीं होती, उमंग उत्साह नहीं है, इंस्पायर्ड नहीं है, तो हमें वो वर्क थकान दे देता है। तो अपने आप को एनर्जेटिक रखें, अपने आप को इंस्पायर्ड रखें, दूसरा कोई मुझे इंस्पायर नहीं करेगा। सेल्फ मोटिवेशन हम डेवलप करें, अपना अपने आप को वाहवाह करें, अच्छे काम के लिए अपने आप को पैटिंग करें। तो जितना हम अपने आप को इंस्पायर रखेंगे और सेल्फ एस्टीम हाई होता जाएगा, तो इन सब ये सब बातें छोटी हो जाएंगी। और इन बातों को इग्नोर करना, अवॉइड करना इजी हो जाएगा। तो ये कुछ अनुभव हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और बैलेंस्ड अप्रोच, मध्यम मार्गीय जिसको कहा है गीता में, मध्यम मार्गीय, अति सर्वत्र वर्जते, अति हर जगह बुरी होती है। तो अति में हम मध्यम मार्ग में आते हैं। भौतिक और अध्यात्म का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है, लव एंड लॉ का बैलेंस है, एम्बिशन एंड सेटिस्फेक्शन का बैलेंस है। एम्बिशियस नहीं होंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? फिर तुम सुस्त हो जाएंगे। कोई एम्बिशन ही नहीं है तो हम वर्क भी नहीं करते, सुस्त हो जाते हैं। तो एम्बिशन भी और सेटिस्फेक्शन, इसका बैलेंस है। रेस्पॉन्सिबल नहीं है, रेस्पॉन्सिबल भी है, लेकिन रिलैक्स्ड भी रहें, मेंटली इजी भी रहें, इजी नेचर बनाएं, ह्यूमर को अडॉप्ट करें। ह्यूमर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देता है। तो ह्यूमरस एक क्वालिटी है, ह्यूमर होना। तो लाइफ जहां बैलेंस्ड है तो वहां ब्लिसफुल है। और इसके लिए गीता ने हमें जो बेसिक बातें सिखाई हैं, साथ ही परमात्मा को मानो और साक्षी डिटैच होकर अपना रोल करो। सर्वशक्तिवान साथी, अब मैं महान आत्मा हूं, अब मेहमान हूं इस संसार में, निमित्त बन के मुझे कार्य करना है और निर्माणता के गुण को धारण करना है और निर्मल स्वभाव बनाना है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें स्पिरिचुअलिटी से सीखने को मिलती हैं, और मेडिटेशन एम्पावर करता है, तब हम इन बातों को जीवन में अपना पाते हैं। ओम शांति।
धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी, आपने बैलेंस्ड लाइफ के लिए कई अच्छी युक्तियां बताई। सबसे पहली बात कि आत्मनिरीक्षण करे, सेल्फ एनालाइज करे, आत्मचिंतन करे, और आत्मा का जो एक एक गुण है, सिर्फ उसका वर्णन या चिंतन ही नहीं पर उसका अनुभव भी करे, तब हम अपने ऊपर सेल्फ पर कंट्रोल कर सकेंगे, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकेंगे, और सेल्फ एस्टीम उसकी आज आवश्यकता है। तो किस तरह से हम इन बातों को अपना करके, बहुत छोटी छोटी बातें पर जीवन में अपना कर हम बैलेंस्ड लाइफ बना सकते हैं। कर्म और योग का बैलेंस, ये भी आपने बहुत ही सुंदर एक विधि बताई। उम्मीद है आप सभी को इस विधि से बहुत ही लाभ होगा। अब मैं आह्वान करने चाहूंगी बहन नीरा मल्होत्रा जी, IRS कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स करनाल में आपकी पोस्टिंग हुई है। आपके पास लगभग 20 वर्ष से अधिक का एक्सपीरियंस है। आपने हैदराबाद, मुंबई, थाने, पुणे अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दी है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी में, MSc किया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आज के इस विषय पर आप अपने विचार हम सबके समक्ष रखेंगे। बहन नीरा मल्होत्रा जी।
राजयोगिनी बहन गीता जी, बहन पूनम जी, बहन सरला जी, श्री विमन आहूजा जी, मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष जो खड़ी हूं, आपको कोई भाषण देने के लिए नहीं खड़ी हूं। यहां पे सब बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग विभागों से आए हैं। इवन जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके पास अपना ही तजुर्बा है घर को एडमिनिस्टर करने का, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है। आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूं, वो सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने अपने सबसे पहले माता पिता से सीखा, फिर स्कूल और कॉलेज में अपने शिक्षकों से सीखा, और बाद में जब मैं आई सर्विस में तो अपने सीनियर्स, जूनियर्स, साथियों सबसे सीखा, यहां तक कि पब्लिक से भी सीखा जो मेरे समक्ष आते थे। तो मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि जो मैंने आज तक अपने जीवन में सीखा वो सिर्फ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, मेरा मानना है जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो इस सेमिनार का टॉपिक है, मेरे मानने में उसका जो निचोड़ आता है, और क्योंकि ये सेमिनार एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, उसका निचोड़ आज के टॉपिक में आ जाता है। और मैं अपने व्यू पॉइंट से इसको कैसे दिखा सकती हूं वो मैं आपके सामने समक्ष रखती हूं। हम पहले देखेंगे इस सेमिनार का टॉपिक क्या था, गॉडली विजडम फॉर इंस्पिरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ, एक एडमिनिस्ट्रेटर को गॉडली विजडम क्यों चाहिए? भाई, बच्चा पैदा होता है, उसको वहां बोलते हैं पढ़ो लिखो, क्वालिफाइड बनो, टेक्निकल एजुकेशन गैदर करो, एंट्रेंस एग्जाम में जाओ, अच्छी से अच्छी पोस्ट हासिल करो, यू आर अ विनर इन लाइफ। देन वेयर डज दिस गॉडली विजडम कम इन एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? भगवान का स्थान घर में होता है। आप घर से निकलते हो, अगरबत्ती जलाते हो, या जिस भी भगवान को प्रेयर करते हो, आप नमन करते हो, भगवान वहां है। दिल किया, शाम को चले गए किसी दिन, कभी सेरेमनीज हुई, भगवान को याद कर लिया। अब जब ये तीन जगहों पर भगवान हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, भगवान कहां से आ गए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन कि गॉडली विजडम और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है गॉडली विजडम में। आपने जब सब कुछ, आपने एजुकेशन कर ली, आपने बहुत अच्छी तरह से तालीम प्राप्त कर ली, आप टेक्निकली क्वालिफाइड हो गए, आपके पास सब कुछ है। नाउ आपने एक अच्छी जॉब भी ले ली, अब जिंदगी का मूल क्या है जो एक आम आदमी के हिसाब से है? एन एडमिनिस्ट्रेटर, बी इट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास क्या है? पावर विच एवरीवन डिजायर्स, स्टेटस विच एवरीवन वांट्स, रिकग्निशन जो हर इंसान को चाहिए होता है, हर इंसान को चाहिए तो वो पहचान में आए, उसको लोग देखें, पहचाने, एंड लाइफ कंफर्ट्स। जब सब कुछ मिल गया है आपको, अब आपको गॉडली विजडम की क्या जरूरत रह गई? वो बचपन में थी जब आपको बहुत सारी चीजों की तलब थी, जब आपको स्कूल में एग्जाम पास करना था तो भागते थे मंदिर नारियल फोड़ने के लिए, भगवान जी दसवीं में फर्स्ट क्लास आ गई तो नारियल का और लड्डू का भोग जरूर लगाऊंगी, ठीक है? फिर ऐसे ही ग्रेजुएशन में नौकरी मिली तो भंडारा जरूर करेंगे। अब जब भगवान ने वो सब कर दिया, उस वक्त तो गॉड ने काम कर दिया, अब जब जो कुछ मांगा था भगवान से वो सब मिल गया, अब स्टेटस भी है, पावर भी है, रिकग्निशन भी है, और आपके पास लाइफ कंफर्ट्स भी हैं। अब जब भगवान ने सब कुछ दे दिया, देन यू आर ऑल एम्पावर्ड। नाउ व्हेन यू आर ऑल एम्पावर्ड, व्हाई डू यू नीड दिस गॉडली विजडम? नो, इट्स नाउ दैट यू नीड गॉडली विजडम। आज तक जो आप कर रहे थे अपने जीवन में, आपके साथ कोई ना कोई था जो आपका एक सूत्रधार था। जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स आपके सूत्रधार थे, वो आपको बताते थे रास्ता। आप स्कूल कॉलेज में गए, आपके शिक्षकों ने आपको मार्गदर्शन दिया, उन्होंने आपको गाइड किया आपको किस राह पे चलना है, आपके फ्रेंड्स ने आपको गाइड किया, इंस्पायर किया, आपके सीनियर्स ने आपको गाइड किया, इंस्पायर किया, वो आपके साथ चले। फिर जब आप बड़े हुए और आप जॉब लेने के लिए आए, आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में गए, आपने अच्छी क्वालिफिकेशन ली, वहां पे भी आपको गाइड मिले। कई लोग कोचिंग क्लासेस जाते हैं, वहां पे आपको गाइड मिले। मतलब कि जीवन में आप जब तक आपने जॉब ज्वाइन करी, आपके साथ बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको बनाया, मार्गदर्शन दिया। क्यों? क्योंकि तब तक जिंदगी के जो निर्णय आपने लेने थे उसके लिए आप सक्षम नहीं थे। यू आर नॉट सफिशियंटली मेंटली एंड फिजिकली इक्विप्ड टू टेक दोज डिसीजंस। तो इसलिए इस संसार में जो हमने इस प्रकृति की रचना को देखा, इस तरह से नियम बना कि जब तक बच्चा बचपन से लेके एक अवस्था तक नहीं पहुंचता है, उसका कोई ना कोई सहारा होता है। पर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, पर माँ बाप तो तभी भी होते हैं जब जॉब में जाते हैं। नहीं, तब आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो जाती है। यू आर रिकग्नाइज एज मिस्टर मिस मिसेस सो एंड सो। ये सब रिश्ते होते आपके साथ हैं, पर ये अब आपकी सहायता नहीं कर सकते। आपको अब से अपना जीवन अकेले चलना पड़ता है यहां से। Now this is fearsome, this is scary. Now the challenge starts. यहां से आपका चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि अभी तक तो बहुत लोग थे जो आपसे अनुभवी थे, जिन्होंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। अब शुरू होता है वो फेज आपकी लाइफ का जहां पे आपका हर निर्णय आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करता है। यू आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ योर फ्यूचर एवरी डे ऑफ योर लाइफ। आप हर दिन अपने फ्यूचर के निर्माण भवन का पत्थर की नींव रख रहे होते हो। एंड यू आर टेकिंग डिसीशन फ्रॉम डे वन। आप जिस दिन वो पद धारण करते हो, आपको उस दिन से डिसीशन लेना होता है, और आप कहीं नहीं भाग सकते। आपके पास एक हायरार्की जरूर होता है, बट दैट हायरार्की इज ओनली टू एंश्योर दैट यू आर वर्किंग इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। आपके पास हायरार्की जरूर होता है, पर वो हायरार्की होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के निर्धारित बाधाओं में काम कर रहे हो। दैट हायरार्की डजंट टेल यू एग्जैक्टली आपने फाइल में क्या लिखना है, आपने क्या डिसीशन लेना है। आपने यू आर नॉट स्पून फेड। आपको स्पून फीडिंग कोई नहीं करता है, बिकॉज आपको तब तक इतना सक्षम कर दिया जाता है ट्रेनिंग में दैट यू आर रिक्वायर्ड, यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक डिसीजन। आपसे ये अपेक्षा होती है कि आप ये निर्णय लीजिए। आप इधर उधर नहीं झांक सकते हो, और ना ही किसी को ब्लेम कर सकते हो कि मुझे उसने ऐसा समझाया था तो मैंने ऐसा कर दिया। सॉरी, नो सच एक्सप्लेनेशन इज वॉरंटेड और एंटरटेन्ड। कोई आपसे ये एक्सप्लेनेशन सुनके ना तो खुश होगा और ना ही आप पे गौरवान्वित होगा कि आपने कह दिया कि मेरे तो उसने कलीग ने कह दिया था, मेरे सीनियर ने ऐसा समझा दिया था। सॉरी, हियर यू आर एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे आपको अपना निर्णय अपनी सूझबूझ से लेना है, क्योंकि जिस भी संस्था में आप जाते हो आपको वहां तक उतना टेक्निकली और प्रोफेशनली इक्विप कर दिया जाता है कि आप वो डिसीजन ले लो। नाउ हैविंग सेड दैट, आज का टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं, डेवलपिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर बैलेंस्ड अप्रोच इन लाइफ। नाउ दिस इज वेयर योर इनर स्ट्रेंथ कम्स। दैट्स व्हाई आई सेड आज का जो हमारा जो सेमिनार का टॉपिक है और जो आज हमारे दिन का टॉपिक है वो इसका निचोड़ है। व्हाई डू यू नीड गॉडली विजडम फॉर इंस्पिरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? इन माई ओपिनियन इट इज टू डेवलप दिस पर्टिकुलर इनर स्ट्रेंथ। ये जो गॉडली विजडम है, जो इंस्पिरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, वो सिर्फ इस इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए ही है, और इसीलिए उस भगवान की आवश्यकता है। वो भगवान सिर्फ आप मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारे या वहां पे छोड़ नहीं आ सकते। आपको वो भगवान को, वो चाहे आप किसी भी अवस्था में मानो, उसको किसी भी कोई भी शेप में मानो, आपको उस भगवान को अपने हर निर्णय में लाना है। एंड हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट दैट? नॉट बाय प्रेइंग द गॉड। आप एक ऑफिस में या कैंडल या अगरबत्ती जला लोगे तो गॉडली इंस्पिरेशनल नहीं आ जाएगा, इनर स्ट्रेंथ नहीं आएगा आप में। नो, यू हैव टू बेसिकली थिंक व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर, मैं क्या कर रही हूं यहां पे, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं क्यों हूं यहां पे, मेरा क्या रोल है, व्हाट इज माय रोल प्ले। ये पूरा जो सब दुनिया है इसमें हम सब एक, वी ऑल हैव कम टू प्ले अ रोल, हम लोग एक, हम सब एक किरदार निभाने के लिए आए हुए हैं। आपको अपने किरदार को सूझबूझ से समझना है। जैसे आप जब थिएटर देखने जाते हो, सिनेमा देखने जाते हो, यू रियली अप्रिशिएट और बोलते हो उसने इतना रियलिस्टिक परफॉर्म किया कि लगा कि वो ही भिखारी है। दैट इज द डेप्थ टू विच यू हैव टू गो इन टू योर सेल्फ। आपको अपने अंदर वो सूझबूझ लानी है कि अगर मैं इस पोजिशन पे हूं तो मुझसे क्या अपेक्षा है, मेरा क्या रोल है, मैं क्या करने आई हूं, आया हूं, और मुझे मुझसे क्या करवाना चाहिए। एंड इट इज नॉट व्हाट योर बॉस टेल्स यू, आई एम सॉरी, इट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब विज़ोवी द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके बॉस ने कह दिया ये तुम्हारी जॉब एक्सपेक्टेशन, इसमें ये करो, नो आई एम सॉरी, आपके अंदर ये रियलाइजेशन आना चाहिए आपने क्या करना है, आप अपनी संस्था को क्या समझते हो, उसका क्या है रोल समाज में, उस संस्था में आपका क्या रोल है और आपको वो रोल कैसे निभाना है। दैट इज वेयर योर गॉडली विजडम हेल्प्स यू। नाउ द इश्यू इज आपको ये गॉडली विजडम आएगा कहां से, कह तो दिया ये गॉडली विजडम चाहिए, आएगा कहां से, कौन लाके देगा, कोई नहीं लाके देगा। यू हैव टू गो विद इन योर सेल्फ, यू हैव टू हैव दैट रियलाइजेशन। आफ्टर ऑल आपने जो ये एजुकेशन की ये सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेने के लिए नहीं की है, एंड दैट इज वाई दे से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एजुकेशन। आपने हजार डिग्रियां प्राप्त कर ली हो, आपके पास नॉलेज फिर भी नहीं हो सकती। आपने चाहे एक डिग्री भी ना ली हो पर आपके पास नॉलेज जरूर हो सकती है अबाउट लाइफ। और जिस इंसान के पास नॉलेज है वही धनी है, ना कि जिसके पास हजार डिग्रियां हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी वन ऑफ अस वी रिक्वायर ओनली टू थिंग्स इन लाइफ, सिर्फ दो ही चीजों की आवश्यकता है, एक पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा भिखारी का बच्चा होता है स्ट्रीट पे इतनी खुशी से बारिश में हंसता खिलखिलाता फटे कपड़ों में हाथ में कटोरे लिए घूमता है, और पता जब मैं उसको देखती हूं मैं इतनी ज्यादा खुश हो जाती हूं क्योंकि मैं उन बच्चों को भी देखती हूं जो एसी कार से निकलते हैं, एसी घरों में घुसते हैं, ड्राइवर दरवाजा खोलता है और चेहरे इतने इतना टेंशन होता है, और यहां एक बच्चा होता है जिसके पास ना छत है ना खाना है, उसको ये नहीं पता उसका अगला मील कहां से आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो रात को कहां सोएगा, पर वो उस बारिश में इतनी मस्ती से एंजॉय करता है। और जब मैं उसके देखती हूं, आई एम टेलिंग यू माई डे इज मेड। मैं सिर्फ उसको देखती ही जाती हूं क्योंकि वो मेरा उस दिन का इंस्पिरेशन रहता है कि उससे सीखो खुश कैसे रहा जाता है, उससे सीखो कि खुशी एसी से नहीं मिलती है, लेटेस्ट मॉडल कार से नहीं मिलती है, लेटेस्ट बंगले से नहीं मिलती है जो कि फुली इक्विप्ड हो, सबसे हाईएस्ट पोजीशन से भी खुशी नहीं मिलती है। खुशी मिलती है जब यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, आप अपने साथ सच्चे हो, आप अपने दिल में झांक के बोल सकते हो कि जहां तक मेरी क्षमता थी, जहां तक मेरी पहुंच थी, जहां तक मैं कर सकती थी कर सकता था, मैंने सही किया। बट यस, आपकी भी लिमिटेशंस हैं, बट आपने प्रयत्न तो किया। दैट इज वेर योर इनर स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम, व्हेन यू आर एबल टू फेस योरसेल्फ। आपकी इनर स्ट्रेंथ तब आती है जब आप शीशे में देख के बोल सको मैंने जानबूझ के कभी जिंदगी में किसी को हानि नहीं पहुंचाई। फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाई? एडमिनिस्ट्रेटर को एवरी डे डिसीजंस लेने होते हैं और उसके डिसीजंस जो होते हैं उसके वाइड रैमिफिकेशंस होते हैं, उसका बहुत लोगों पे प्रभाव पड़ता है। और जब तक आप में इनर स्ट्रेंथ नहीं होगा आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाओगे, और जब आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाओगे देन यू आर नॉट प्लेइंग योर रोल, आप अपने किरदार को नहीं निभा रहे हो सही तरीके से। और जब आप अपने किरदार को नहीं निभा पाते हो, मेरी जितनी भी आज तक की जिंदगी है मेरे अनुभव के साथ में मैं बताती हूं चाहे कोई कितनी भी ऊंची पोजीशन में पहुंच जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, चाहे उसके पास कितनी भी धन दौलत हो जाए, अगर उसने जिंदगी में सही काम नहीं किए तो कहीं ना कहीं वो कचोटता है, वो चाहे कितना भी इनसेंसिटिव इंसान हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक बंडल ऑफ इमोशंस हैं, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट डीलिंग विद इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। हम लोग मानव से, हमारा रोज का इंटरेक्शन एक दूसरे से है, हम लोगों का इंटरेक्शन जो है फीलिंग्स से है, इमोशंस से है। और इसके लिए आपको एक गॉडली विजडम की बहुत जरूरत है, क्योंकि वही आपको इनर स्ट्रेंथ देगा फॉर गुड डिसीजन मेकिंग। और आप इस गॉडली स्ट्रेंथ को तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप जिंदगी में एक सेकेंड ठहर के रोज सोचो कि मैं क्यों हूं, कहां हूं, क्या करने आई हूं और मेरा क्या कर्तव्य है हर एक के प्रति, सिर्फ उस सीट के प्रति नहीं, हर एक के प्रति, जो भी आपका दायरा है जिंदगी का। और जब आप सोच के ठहर के उस क्षण को एक बार अपने अंदर ये धारण कर लोगे कि मेरा क्या रोल है, मेरा क्या कर्तव्य है, आप सही मानों में सच्चे, सही और आपके दिल को प्रसन्न करने वाले डिसीजन ले पाओगे। माइंड यू, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू कैनॉट मेक एवरीवन हैप्पी। आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हर एक को खुश नहीं कर सकते हो, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। बट वंस यू मेक अ राइट डिसीजन, इट गोज डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड। यू मे नॉट बी अप्रिशिएटेड इमीडिएटली, क्योंकि कई बार आपको हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपको शायद इमीडिएट अप्रिसिएशन ना मिले, इमीडिएट फ्लावर बुके ना मिले, डोंट वेट फॉर दैट, बिकॉज वंस यू मेक राइट डिसीजन, आपको आपकी संस्था किसी ना किसी दिन उस राइट डिसीजन के लिए जरूर प्रशंसित करेगी। आपके तरफ शायद इस तरह के फूल के बुके नहीं आएंगे, बट दैट अप्रिसिएशन काउंट्स मोर, दैट अप्रिसिएशन काउंट्स मोर बिकॉज यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट। आपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट और ग्रोथ में आपने अपना योगदान दिया। हर योगदान के लिए आपको फ्लावर बुके की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फ्लावर बुके तो आपको दे दिया गया है, आपको मान सम्मान दे दिया गया है, आपको जो पदवी दी गई है वही आपका मान सम्मान है। आप रोज फ्लावर बुके के लिए क्यों वेट करते हो? और कितने फ्लावर बुके चाहिए होते हैं आपको? उसके बाद तो अपना कर्तव्य करो। एंड दिस इज वेयर योर गॉडली विजडम कम्स इन टू प्ले। यहां आता है आपको आपका गॉडली विजडम काम, क्योंकि वही आपको वो इनर स्ट्रेंथ देता है वो डिसीजन लेने के लिए। मैं इन्हीं दो शब्दों से आप सबका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे समय दिया। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन नीरा जी। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपना अनुभव हम सबके बीच में रखा और इस बात को कहा कि गॉडली विजडम यही इनर स्ट्रेंथ दे सकती है और उसके लिए आवश्यक है कुछ क्षण रुककर अपने आप को देखने की, अपने आप को पहचानने की कि हम क्यों हैं, क्या रोल है मेरा, इसे जानने की आवश्यकता है। अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से समझना और फिर उसे निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले गेस्ट को, माननीय भ्राता विपिन आहूजा जी। आप डायरेक्टर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली से हैं। आपने बीटेक, एमबीए, एलएलबी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन आईटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। आप पिछले 20 वर्षों से फैकल्टी है एकेडमी ऑफ एक्साइज कस्टम सीबीआई एकेडमी में, आप 20 वर्षों से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आज के इस विषय पर आप अपनी भावनाएं, अपने मनोभाव हम सबके बीच में रखेंगे। माननीय भ्राता विपिन आहूजा जी।
ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी बहन गीता जी, बहन पूनम जी, बहन सरला जी और बहन मीरा जी, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर बातें अभी मीरा जी ने बताई दैट वाई वी नीड गॉडली विजडम। इससे पहले बहन पूनम जी ने कहा कि हमें उपयोग करना है ना कि उपभोग, और किसी भी परिस्थिति में विवेक को नहीं खोना अगर हम प्रिंसिपल पर रहें। मैं थोड़ा सा हटता हूं ताकि सत्र जो है वो मोनोटनस ना हो जाए। भगवत गीता अगर आप पढ़ें तो अंत में जो मंत्र आता है वो है ओम शांति, और उसके बाद क्या होता है, संसार का सबसे बड़ा महायुद्ध। क्या ये सत्य है? नहीं, सत्य नहीं है। ओम शांति मंत्र के बाद अर्जुन उठाते हैं गांडीव और आरंभ करते हैं अपना कर्म, तो इस मंत्र के बाद अर्जुन अपने कर्म पे जुट जाते हैं। यहां भी हम जब इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से हम अपने कर्म पर अग्रसर हो जाते हैं। यहां आने से मेरा अनुभव है, आपका भी होगा शायद, कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। प्रश्न किसके मन में नहीं आता? भगवान जब गीता का उपदेश सुना रहे थे तो अर्जुन के मन में भी बहुत से प्रश्न उठे। उदाहरण के लिए मैं अध्याय 4 और श्लोक, पहले श्लोक से तीसरे श्लोक तक बताता हूं। भगवान कहते हैं, मैंने ये योग सखा प्यारे पहले सूरज को फरमाया। मैंने, यानी भगवान बता रहे हैं, ये योग मैंने सबसे पहले सूर्य को समझाया था। मैंने ये योग सखा प्यारे पहले सूरज को फरमाया, पुनः इक्ष्वाकु पुत्र मनु से सप्त ऋषियों ने सुन पाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, अर्जुन कुछ हैरान हुआ, बोला, श्री महाराज प्रश्न यहां एक और है, सुनिए योगी राज। देखिए अर्जुन के मन में भी प्रश्न आ गया। अर्जुन कुछ हैरान हुआ, बोला, श्री महाराज प्रश्न यहां एक और है, सुनिए योगी राज, है जन्म आपका द्वापुर में, सूरज का जन्म पुराना है, है जन्म आपका द्वापुर में, सूरज का जन्म पुराना है, किस तरह प्रभु ने योग सभी सूरज के प्रति व्याख्याना है, आपने ये सूरज को कैसे समझा दिया। सुन कुंती पुत्र प्रश्न को हर्षाये नंदलाल, और मधुरवाणी में वो यूं बोले, गोपाल तेरे और मेरे जन्म सदा होते हैं होते आएंगे, मुझको है इनका ज्ञान मगर दिल से तूने बिसराए। कल बहन कह रही थी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। सो जिसको इतने जन्मों का अनुभव याद रहेगा वो कहीं भी पहुंच जाएगा। तो प्रश्न तो आएगा, यहां आने से इस संस्था के मैं आभारी हूं कि बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। सुबह बहन बता रही थी कि आप भगवान जैसा हो सकते हो, भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो वही है, मगर भगवान जैसा हो सकते हो। एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूं। एक मंदिर में, छोटे से मंदिर में भगवान की सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी और वहां एक 13-14 बरस के बालक को यह कहा गया कि मंदिर बहुत छोटा सा है, तुम्हारा काम है सिर्फ इसको साफ रखना। वो इनोसेंट बालक मंदिर में आके, उसको लगा वाकई भगवान का घर है, मुझे इसको बिल्कुल साफ रखना है, तो उसका पूरा तन मन और इन्वॉल्व होके वो उस मंदिर को साफ करना शुरू किया उसने। एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन उसके मन में ख्याल आया कि ये भगवान 3 दिन से खड़े हैं, थके नहीं, इनको विश्राम कर लेना चाहिए। बालक देखिए इनोसेंस है उसकी, उसको जो ड्यूटी दी गई है वो उसी में इन्वॉल्व हुआ हुआ है और वो भगवान पे तरस खा रहा है कि भगवान आप आराम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी जगह खड़ा हो जाता हूं। अगर ड्यूटी देनी है तो भगवान मैं ही खड़ा हो जाता हूं, आप रेस्ट कर लें। भगवान ने बच्चे की इनोसेंस को जब देखा तो उस मूर्ति में भगवान प्रकट हुए, बोले मैं रेस्ट तो कर सकता हूं मगर मेरी कुछ शर्त है। तो क्या शर्त है भगवान? एक तो आप यहां चुपचाप रहेंगे, बोलेंगे नहीं खड़े होकर, और दूसरा मुस्कुराते रहेंगे। बच्चे ने कहा ठीक है मैं मान जाता हूं, पर आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता था कि आप, मेरा उद्देश्य यह है कि आप रेस्ट कर लें, 3 दिन से आप खड़े हैं यहां पर। भगवान ने कहा ठीक है तुम खड़े हो जाओ, मेरे वस्त्र ये लो और पहन के खड़े हो जाओ। सुबह सुबह बालक खड़ा है, एक बहुत धनी सेठ जिसको अभी ताजा ताजा कहीं से 5-6 लाख की पेमेंट मिली है, थैला गले में लटकाए गांव में आया, उसने कहा मंदिर में हुआ हूं, प्रभु की कृपा से पेमेंट आई है, दान दिया 500-700 रुपए का, जो थैला वहां जमीन पर रखा, प्रणाम किया, और प्रणाम तो वो रोज ही करता था, रूटीन में वो चल पड़ा, थैला वहीं रह गया। लड़के को लगा कि अरे ये तो थैला भूल के जा रहा है, इसको बोल दूं कि अपना थैला ले जाए, मगर फिर ख्याल आया कि मैंने भगवान से प्रॉमिस किया था कि चुप रहना है और मुस्कुराते रहना, तो चुप भी रहा और मुस्कुराता भी रहा। थोड़ी देर में एक गरीब आदमी आया, 8 आने जेब से निकाल के दान दिया, भगवान मेरी बिटिया की शादी है, 2-3 लाख रुपए का खर्चा है, आप बंदोबस्त कर देना। नमस्कार किया, माथा टेका, जैसे ही देखा रही है तो थैला रखा है, थैला खोला तो काफी नोट थे, शायद इनकम टैक्स कमिश्नर साहिबा ने नहीं देखे थे। भगवान तुमने इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, थैला उठाया और चलने लगा। अब वो लड़के को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, मैं इसको रोकूं, बोलना चाह रहा था मगर बोला नहीं, क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ था भगवान से कि चुप भी रहना और मुस्कुराते भी रहना। वो अभी बाहर निकला था तो एक सेलर, नाविक बोलते हैं, सेलर आया, उसने भगवान को प्रणाम किया, कहा मैं 6 महीने के लिए समुद्री यात्रा पे जा रहा हूं, कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरी यात्रा सफल करना। माथा टेक रहा था तो पीछे वो सेठ जी एक पुलिस वाले को लेके आए कि मेरा यहां से थैला चोरी हो गया। अब वहां वही आदमी खड़ा था सेलर, तो पुलिस वाले तो वही करते हैं, जाते ही पहले तो 2 थप्पड़ लगाते हैं, बाद में पूछते हैं कि थैला कहां है। अब वो थैला पूछे तो उसने कहा नहीं मैंने तो कोई थैला नहीं उठाया। अब उसको मार पड़ते देख के वो लड़का से रुक चुप रहा नहीं गया। बोला अब तो बड़ा मुश्किल है। बोला रुकिए रुकिए, थैला इन्होंने नहीं उठाया, वो अभी जो आदमी बाहर गया थैला उसने उठाया। अब वो नाविक बड़ा खुश हुआ कि भगवान आपने मेरे को बचा लिया, प्रणाम करा और वो भी चला गया। भगवान आए, भाई तू कर क्या रहा है, तेरे से मैंने एक प्रॉमिस किया था चुप रहने का और मुस्कुराने का, तुम बोल पड़े। भगवान आपकी ड्यूटी बड़ी गलत है, बहुत मुश्किल ड्यूटी है, चुप रहना संभव नहीं है, मैं चुप नहीं रह सकता हूं, हैरान हूं आप ऐसे इतने दिनों तक चुप कैसे रह जाते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। भगवान कहते हैं अरे नादान, उस सेलर की नैया 3 दिन बाद समुन्द्र के तूफान में डूब जानी थी, मैंने एक व्यवस्था की थी कि वो थाने में जाएगा बच के आ जाएगा, मगर उसकी नाव छूट जाएगी और उस गरीब की बिटिया की भी शादी हो जाएगी, बाद में साफ ठीक हो जाएगा। कहता भगवान ये पेशेंस मेरे में नहीं रही, मैं तो बोल ही पड़ा। अतः भगवान की ड्यूटी बहुत मुश्किल है, जो मुस्कुराते रहते हैं और चुप रहते हैं। यहां हम आके एक चीज और भी सीखते हैं, और बहुत से मेरे भाई और बहन मेडिटेशन करते ही रहते हैं। मेडिटेशन क्यों करते हैं और हमारे को इससे क्या लाभ होता है? मेडिटेशन से हम अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब समय हमारा अंत समय आता है, उस समय हम उस प्रभु में प्रभु को याद रखते हैं। मैं 4वें और 5वें अध्याय में ही रहूंगा गीता के। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति किसी वस्तु की कटुवस्थ याद में मरता है, जो व्यक्ति किसी वस्तु की कटुवस्थ याद में मरता है, देह त्यागने के पश्चात उसी को हासिल करता है। पर इसके लिए जरूरी है आयु भर याद करे मुझको, पर इसके लिए जरूरी है आयु भर याद करे मुझको, जिस प्राणी की सारी आयु विषयों के अंदर बीती हो, फिर अंत समय उसकी क्यों कर मेरे चरणों में प्रीति हो। जिसने सारी आयु तो विषयों में लगा दी, तो अंत समय वो मेरे चरणों में नहीं आ सकता, उसकी फिर मेरे से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। तो आयु भर याद करे मुझको, पर इसके लिए जरूरी है आयु भर याद करे मुझको, जिस पापी की सारी आयु विषयों के अंदर बीती हो, फिर अंत समय क्यों कर मेरे चरणों में प्रीति हो। उत्तरायण जब सूरज होई, उत्तरायण यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरायण में सूरज होई शुक्ल पक्ष में शुभ दिन कोई, योगी तजदे तब प्राणा निश्चय पावे पद निर्वाणा, तत् विपरीत समय जब आवे योगी परम गति नहीं पावे। भगवान ने इतने स्पष्ट शब्दों में गीता में कह दिया कि आपको सारी आयु मेरे साथ लगानी है, विषयों में नहीं लगानी है। अभी बहन बता रही थी, बहन सरला ने बताया कि विषयों से हटना है। बहन पूनम ने भी यही कहा कि हमारे को अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है। तो अगर हमारी सारी आयु विषयों में रहेगी तो हमें परम गति प्राप्त नहीं होगी। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। हमारा अंदर कुछ सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस चलता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम हैं इनको सब कॉन्शियस कंट्रोल करती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप प्राणायाम, ब्रीदिंग सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, प्राणायाम से हम इसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देख सकते हैं जब हम शुद्ध आहार खाते हैं, बट नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे ऊपर है। और मेडिटेशन से हम अपने नर्वस सिस्टम को चार्ज करते हैं। मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर मुझे अनुमति हो तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ये 79 की बात है, तो हमारे कॉलेज में एक चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी हूं, वहां पर एक रिसर्च हुई और एक आदमी जिसकी बाजू कटी हुई थी, इम्प्यूट करना पड़ा था यहां से, उस आदमी के नर्व्स तो हमारे बॉडी में सब तरफ हैं, तो नर्व्स को टैप किया गया कि बॉडी में यहां पर कटी हुई बाजू में कहां कहां आ रहे हैं। टैप करके उन नर्व्स प्वाइंट के ऊपर सेंसर लगाए गए और सेंसर लगाने के बाद उसके आगे एक मैकेनिकल हैंड आर्म बना दी और उसको कहा गया कि आप इधर देखिए और जरा इस हाथ से ग्लास को पकड़िए। तो जैसे ही नर्वस सिस्टम ने सिग्नल भेजा, यहां से हाथ कटा हुआ था तो सिग्नल यहां तक तो आया, बट उसके बाद सेंसर्स ने कैच करा और आगे मोटराइज्ड हैंड ने हाथ से वो ग्लास पकड़ लिया। हमारी सभी जितने भी इंस्ट्रक्शंस ब्रेन पास करता है सभी बॉडी पार्ट्स को, वो नर्वस सिस्टम से जाते हैं और नर्व के थ्रू जाते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, और वो इम्पल्स जो है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इस चार्ज का जो कंट्रोलर है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे मस्तिष्क में है। कल बहन बता रहे थे एक नक्शा बना के मस्तिष्क का कि यहां हमारे यहां साइंस ने प्रूव कर दिया वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो चार्ज हो जाता है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाता है। सो जितना हम मेडिटेशन करते हैं उससे पिट्यूटरी ग्लैंड साइंटिफिकली स्ट्रांगर हो जाता है, आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं और लाइफ भी अच्छी जीते हैं। मैं अंत में धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया यहां बोलने का और कुछ अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करने का। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता विपिन आहूजा जी, आपने अनुभव युक्त विचार हम सबके बीच में रखे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी से, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य हम सबके सामने रखेंगे। आप 1969 में कोमल आयु 14 वर्ष की कोमल आयु में आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी। 1972 में आपने अपने जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित की। तब से 14 वर्षों तक आप भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में कार्य करती रही। 1993 से आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू में अपनी सेवाएं देती रही। आप राजयोग शिक्षिका हैं, बहुत ही सुंदर राजयोग शिविर कराती हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आपसे हमारा नम्र अनुरोध है कि आज के इस विषय पर आप अपना वक्तव्य हम सब के बीच में रखेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। विश्व कल्याणकारी हम सर्वात्माओं के परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, मंच पर विराजमान आज के सत्र के हमारे मुख्य मेहमान नीरा बहन विविन भाई, हमारी मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन, और आज के सत्र का संचालन जो कर रही है सरला बहन, और आप सभी भारत के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए प्रभु प्रेमी भाई बहने, बहुत सुंदर विषय को लेकर हमारा ये सत्र चला और प्रशासन के क्षेत्र में जो स्वयं कार्य कर रहे हैं ऐसे हमारे मेहमानों ने बहुत सुंदर अनुभव युक्त विचार हमारे सामने रखे। प्रशासन में आध्यात्मिकता कहो, आध्यात्मिक प्रज्ञा कहो, ईश्वरीय विवेक की क्यों आवश्यकता है मीरा बहन ने बहुत अच्छी तरह बताया। और योग से क्या प्राप्ति है और कैसे सेल्फ कंट्रोल आता है विविन भाई ने भी बताया। और ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जो स्वयं लगभग 25 से भी अधिक सेवा केंद्रों के प्रशासन का कार्य संभाल रही हैं और खुद राजयोगिनी हैं, दोनों अनुभव उनके पास है। भगवान के द्वारा जो विजडम प्राप्त हुआ है वो बातें उसने हमारे सामने रखी। मैं समझती हूँ आप सभी भी इस बात से तो सहमत हो ही गए होंगे कि जीवन का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, प्रशासन का हो या मैनेजमेंट का हो, घर में हो या समाज के बीच हो, लेकिन व्यक्ति ही उस कार्य में लगती है इसलिए उनका पूरा व्यक्तित्व उस कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। बेशक हमारे पास उस कार्य की नॉलेज हो वो तो दुनियावी स्टडी से हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे उनकी अपनी कैपेसिटी चाहे उनकी लिमिटेशंस उनके कार्य क्षेत्र को जरूर प्रभावित करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि जैसे हमारे पास अपने कार्य की नॉलेज या उससे संबंधित स्किल्स हमारे अंदर हों पर उसके साथ साथ हमारे अंदर वो गुण और शक्तियां भी हों, ये दोनों बातें जरूरी हैं। आपने नागार्जुना फर्टिलाइजर्स नाम सुना होगा, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर केवी के राजू। एक बार हमारे एक कॉन्फ्रेंस में वो आए थे और अचानक बीच से लाइट चली गई, पर बहुत शांति से शिस्त से स्मूथली पूरा कार्यक्रम चलता रहा। वो बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने कहा मुझे आपके हेडक्वार्टर में आना है। वो यहां आए और उन्होंने लगभग काफी डिपार्टमेंट्स जो यहां वर्क कर रहे हैं उनको विजिट किया। उनको बड़ा आश्चर्य लगा, वे हमारी बड़ी दादी से मिले, उस समय दादी प्रकाशमणि जी थे, उन्होंने कहा कि दादी मैं अपनी कंपनी में बहुत हाईली क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट करता हूं और बहुत हाई सैलरीज भी देता, समय प्रति समय ट्रेनिंग के द्वारा हम उनके नॉलेज को अपडेट भी करते हैं, लेकिन जो दिल से कार्य करना चाहिए लोग नहीं करते, उसमें मोटिवेशन नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, अपना समझकर काम नहीं करते हैं, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा दादी मैंने यहां देखा कि कोई इतने हाईली क्वालिफाइड भी नहीं है डिपार्टमेंट में, कोई सैलरी भी यहां नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतना सुंदर कार्य कैसे चलता है। मुझे याद है उस समय दादी ने एक ही आंसर उनको दिया। उसने पूछा कि दादी आपकी सफलता का क्या राज है, तो दादी ने एक ही शब्द में कहा कि स्पिरिचुअल पावर्स ही इनकी सफलता का राज है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक ज्ञान जिससे हमें विजडम प्राप्त होता है, सद्विवेक जिसे हम कहते हैं, आध्यात्मिक प्रज्ञा जिसे हम कहते हैं, वो सत्य ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त होती है, जिसमें सारे ही मूल सनातन सत्यों को यहां समझाया जाता है कि हम स्वयं कौन हैं, परमात्मा कौन है, ये संसार क्या है, कर्म की गति क्या है, जीवन का सही धर्म क्या है, समय कौन सा चल रहा है। जब ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो व्यक्ति में वो अवेयरनेस आती है, एक सच्ची समझ आती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हमें जीवन में क्या लेना है और क्या सबको देना है, इसकी एक यथार्थ समझ एक जागृति व्यक्ति में आती है, अपने आप वो अपने कर्तव्य के लिए समझता है और स्वयं ही वो करता है। और जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो आज के सब्जेक्ट में भी है, कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को कैसे विकसित करें, आंतरिक माना ये हमारा बाह्य स्वरूप है, शारीरिक स्वरूप है, हमारा आंतरिक अविनाशी स्वरूप वो चैतन्य आत्म स्वरूप है, जो अविनाशी है उसे हम अपना आंतरिक स्वरूप अंतर जगत कहते हैं। हमारे इस आंतरिक चैतन्य आत्म स्वरूप में ही विचार है, योजनाएं हैं, भावनाएं हैं, शरीर तत्व है, आत्मा शक्ति है। तो मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने चैतन्यात्म स्वरूप में स्थित होते हैं, उनके बारे में बार बार सोचते हैं, तो आत्मा में जो शक्तियां हैं, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, वो जागृत होती है। जैसे हम एक ही प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। अब एक्सरसाइज करने से कोई बाहर की शक्ति अंदर नहीं आ जाती, लेकिन फिर भी मसल्स मजबूत होते हैं, क्योंकि शक्ति के जो कोश बिखरे हुए हैं वो निश्चित एक्सरसाइज बार बार करने से फिर वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और मसल्स मजबूत होते हैं। राजयोग मेडिटेशन में भी आज हमारी इच्छाएं, भावनाएं, विचार, उर्मियां, जो अनेक व्यक्ति, वस्तु, बातों में बिखरे हुए हैं, जब हम मेडिटेशन के द्वारा अपने स्वयं के आत्म स्वरूप के चिंतन द्वारा उसे केंद्रित करते हैं और उस परम शक्ति से उसे जोड़ते हैं, इससे हमारा अपना शक्ति स्वरूप पुनः जागृत होता है। केवल आत्मचिंतन, केवल स्वचिंतन या केवल मन को ऑब्जर्व करने से हम अपने आप को एम्पावर नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा समय प्रकृति के संसर्ग में आते आते अभी बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए आवश्यक है उस ऑलमाइटी, उस परम शक्ति परमात्मा से मन बुद्धि जोड़ने की, ताकि हम अपने आप को फिर से शक्तिशाली बना सके। इस प्रकार का अभ्यास रोज जरूरी है फिजिकली हेल्दी रहने के लिए। जैसे रोज श्रम करना, भोजन करना, विश्राम करना जरूरी है, इस प्रकार आत्मा को भी, स्वयं को, हमारे अपने मन और बुद्धि को हेल्दी बनाने के लिए, ताकि वो एक बैलेंस्ड स्थिति में रहे, प्रलोभन आए तो भी न खींचे, अवरोध आए तो भी ना हटे, प्राप्ति है तो भी खुशी बैलेंस में रहे, नुकसान हुआ तो भी संभल कर चले। जीवन है, कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, इन दोनों सिचुएशन में, प्राप्ति की है या नुकसान की, हम अपने आप को स्थिर और स्वस्थ रख सके, उसके लिए हमें ये रूटीन बनाने की जरूरत है कि शरीर के लिए जैसे रोज स्नान करना, भोजन करना, श्रम करना, आराम करना ये जरूरी है, इस प्रकार आत्मा के लिए भी ये जरूरी है कि कि रोज सद्ज्ञान का भोजन मन बुद्धि को दें, रोज हम मेडिटेशन के द्वारा मन बुद्धि की ड्रिल करें, कुछ समय हम अपनी रिलैक्स स्थिति में रहे, ये जरूरी है। हम इस विश्वविद्यालय में समर्पित हैं, ऐसा नहीं है कोई हम सारा दिन मेडिटेशन में बैठे रहते, नहीं। यहां जो भी समर्पित है, हरेक को अपनी अपनी सेवा की जिम्मेवारी है, पर हमारी दिनचर्या में जैसे आप रोज मॉर्निंग योग शिविर करते हैं, हम लोग भी रोज मॉर्निंग हमारा क्लास होता है, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे का 8 बजे तक का समय वो सेल्फ एम्पावरमेंट का समय। रात को देरी से सोए देरी से उठे, इसके बजाय हम लोगों ने दिनचर्या में परिवर्तन किया कि रात को 10-10:30 सो जाए ताकि सुबह हम आराम से 4 बजे उठ सके। 4 से 5 हम मेडिटेशन करते हैं, 5 से 6:30 नहा धो के तैयार होते हैं, अपनी ड्यूटी है सेवा करते हैं, नहीं है वॉक करें एक्सरसाइज करें, फिर मॉर्निंग 6:30 से 8 हमारा क्लास होता है जिसमें हम गॉडली वर्शंस ईश्वरीय ज्ञान के महावाक्य सुनते हैं। बस मॉर्निंग में ये थोड़ा सा खुद को समय देने से सारे दिन में बार बार ऑटोमेटिक हमें स्वयं के सत्य शुद्ध शांत स्वरूप के प्रति हमारी अवेयरनेस बनी रहती, जिसके कारण दिन भर चाहे उकसाने वाली बहकाने वाली डराने वाली गुस्सा करने वाली कितनी भी बातें आएंगी, लेकिन मॉर्निंग से एक अवेयरनेस ले लेने से वो बातें नेगेटिवली हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए ये आवश्यक है कि हम रोज कुछ समय स्वयं के प्रति दें। हमें कार्य शांति से करना है, गुस्से से नहीं, पर शांति की स्थिति में बैठने का अभ्यास हम कहां करते। सारे दिन में मन शांत रख के बैठने का कोई अभ्यास ही नहीं। कार्य प्यार से करना है, सबके साथ शुभ भावना रखनी है, पर मन प्रेम स्वरूप बने उसका तो कोई अभ्यास ही नहीं। जब स्वयं में हम भरेंगे शांति प्रेम शुभ भावनाएं, तो वो हमारे कार्य में हमारे व्यवहार में आएगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आत्मिक स्वरूप के विकास का नॉलेज रखें और विकास के लिए जरूरी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। हमारा जीवन ही भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व का एक कॉम्बिनेशन है। शरीर भौतिकता का प्रतीक है, आत्मा आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हमारा जीवन इस संसार में हमारा अस्तित्व ही तब है आत्मा और शरीर के मिलने से। इसलिए केवल भौतिकता भी नहीं चल सकती, केवल आध्यात्मिकता भी नहीं चल सकती, दोनों नॉलेज दोनों पावर जीवन में जरूरी है। और यही चीज यहां सिखाई जाती है। कहा जाता है कि जो अपने आप पर शासन करता है वो सारे जग पर शासन कर सकता है। मन जीते जगत जीत हम कहते हैं। हम मैक्सिमम अपने थॉट्स, वर्ड्स, बिहेवियर, फीलिंग्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और दूसरों को हम दूषित न करें, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, बातों को ब्लेम न करें, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएं। फिजिकल पावर मेरे पास है, मैं फिजिकली हेल्दी हूं, पर अगर मेरे में खुशी, उमंग, उत्साह नहीं है तो कितना भी मोटा ताजा शरीर होते हुए मैं कुछ भी कार्य नहीं करूंगी, क्योंकि मन में उमंग उत्साह ही नहीं। इंटेलेक्चुअल हूं पर क्रिएटिविटी अगर मेरे में नहीं है तो बौद्धिकता होते हुए भी उनका रचनात्मक उपयोग में नहीं कर सकूं। इकोनॉमिकल पावर मेरे पास है पर विजडम नहीं है तो मैं उनका सही उपयोग नहीं कर सकूंगी। तो ये विजडम, क्रिएटिविटी, एंथ्यूजियाज्म, उसे ही स्पिरिचुअल पावर कहते। ज्ञान है पर आचरण में नहीं ला सकते हैं, माना वो पावर नहीं। नॉलेज है पर शक्ति नहीं। टाइम है पर एक्यूरेसी नहीं। वर्ड्स हैं पर स्वीटनेस नहीं। तो यहां आध्यात्मिक पावर से उसे हमें बैलेंस करना है। तो यही जीवन बहुत खुशी से भरा अनुभव होता है और यही कार्य क्षेत्र जहां हम सभी कार्य करते हैं सेटिस्फेक्शन रहेगा, हम थकेंगे नहीं, चिढ़ेंगे नहीं, हमें आनंद आएगा अपने कर्म में ही। खुशी आनंद के लिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें अपने आप में जब आनंद है तो हमें अपने कार्य में भी आनंद है, परिवार में भी आनंद है। तो हमें खुशी है कि आप सभी यहां समय लेकर आए हैं। मैं चाहूंगी, कार्यक्रम तो आप अटेंड कर ही रहे हैं, लेकिन यहां का जो बेसिक नॉलेज और उनका जो साहित्य है वो आप अवश्य लें, उसको अच्छी तरह स्टडी करें, ये बहुत ही यूजफुल है। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ही आध्यात्मिकता है। और हमारा कंसेप्ट अब तक जीवन में कितना गलत रहा कि रिटायर्ड होने के बाद आध्यात्मिकता करनी, रिटायर्ड होने के बाद मेडिटेशन करनी, परंतु नहीं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है। हम कोई भी सिचुएशन में कैसे भी लोगों के साथ बहुत शांति स्वस्थता से अपने आप को चला सकते हैं और खुशी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हम आप सबके लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि आप भी इन अलौकिक अनुभूतियों से अपने जीवन को अवश्य भरपूर करें। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद गीता दीदी जी, आपने उदाहरण के साथ बताया कि किस तरह अपने मसल्स में मसल्स को बार बार एक्सरसाइज करने से शक्ति आती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आसमान से एक एक बूंद गिरती है पानी की, उस एक बूंद का कोई महत्व नहीं होता, पर जब नीचे आने के बाद वह बूंदें एकत्रित हो जाती है तो कई बार बाढ़ भी आ जाती है। एक या दो पैसा कोई महत्व नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, परंतु जब उसे जमा किया जाता है तो वो धन की शक्ति में बदल जाता है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी, हम भी यदि अपने भीतर में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प जमा करते जाते हैं तो वह एक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यह शक्ति हमें संतुलित जीवन जीने की कला सिखा देती है, अनेक गुणों को अपनाने में मददगार बन जाती है। आज का यह सत्र हम एक मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठकर समापन करेंगे इसका।